मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते हैं अरहंतादिमह जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप गृह ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
परम पूज्य मुंदात्री क्षमा सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुंदात्री भव्य सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की।
हम लोग अपने ही जीवन के बारे में पिछले कई दिनों से विचार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि कोई अपने ही जीवन के बारे में विचार करे, फिर भी हमने साहस करके पिछले दिनों, वरना कौन अपने सामने आईना रखता है भैया। दूसरे को आईना दिखाने वाले लोग तो बहुत हैं कि देख लो अपना चेहरा, लेकिन खुद अपना चेहरा आईने में देखने की तैयारी करना, ये तो बहुत विरले और बहुत पुण्यात्मा जीवों का ही काम है। जिसमें हम अपने रूबरू हो सकें, जिसमें हमें अपना ही सामना करना पड़े, वो प्रक्रिया तो बहुत थोड़े से लोग ही पसंद करते हैं। पर हम सब का पुण्य है कि हम अपने ही जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमने अज्ञानतावश बहुत से ऐसे कर्म अपने साथ बांध लिए हैं, ऐसे संस्कार अपने निर्मित कर लिए हैं जो हमें आगे के जीवन को भी बुरा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं या कि हमें प्रेशराइज करते हैं। हमारे ऊपर अपने ही अज्ञानतावश बांधे गए कर्मों का दबाव तो बनता ही है। क्या कोई उपाय है कि उस दबाव के चलते हुए भी, उन तमाम कर्मों के संस्कारों के चलते हुए भी, क्या हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं? तीन चीजें हमारे सामने हुआ करती हैं, हमारा वर्तमान, हमारे अपने भविष्य की चिंता और हमारा अपना अतीत। कुछ है जो कि हम पहले संस्कार के रूप में अपने साथ लाए हैं, कुछ है जो कि हमारे मन में है अपने आगामी जीवन के लिए, और वर्तमान में तो हम जी ही रहे हैं, जिसमें भली बुरी हर तरह की स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शतरंज के खानों की तरह एक काला है तो उसके बाद सफेद आएगा और एक सफेद है तो उसके बाद काला खाना आने ही वाला है। ऐसा बंधा बंधा है भी अगर हमारा जीवन होता तो भी ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है। संभव है कि काले खाने के बाद फिर एक और काला आ जाए और फिर ऐसा लगे कि कभी सफेद आएगा ही नहीं। जीवन में ऐसा अंधेरा भी हो सकता है। उन तमाम विपरीतताओं के बावजूद भी क्या कुछ है हमारे हाथ में जिससे कि हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। और हमने पिछले दिनों ये अनुभव किया है, ये जाना और समझा है कि ठीक है, अगर हमने अज्ञानतावश कोई खोटे संस्कार अपनी आत्मा पे डाल लिए हैं तो ऐसी मजबूरी नहीं है कि हमें उन संस्कारों के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़े। हम उन संस्कारों को तोड़ सकते हैं। जैन दर्शन इस बात का हमें भरोसा दिलाता है, हमारे भीतर ये विश्वास पैदा कर लाता है। कर्म सिद्धांत हमारे भीतर ये विश्वास पैदा करा देता है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बार हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि मैं अपने संस्कारों को तोड़ सकता हूं, मैं अपने बुरे संस्कारों को स्वयं तोड़ सकता हूं। अगर हमारे मन में ऐसा हमने पहले से तय कर लिया है, धारणा बना ली है कि भैया वो तो जो संस्कार जैसे जिसके हैं वो छूट नहीं सकते हैं, तब तो फिर इस कर्म सिद्धांत को समझने का कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, कोई कितना भी खराब से खराब हो, कोई बाल्या डाकू भी हो, वो भी वाल्मीकि बन सकता है। कोई बहुत पतित से पतित व्यसनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में भी अपने आत्म कल्याण के अवसर बहुत हैं। एक पाप में लिप्त कुत्ता भी पंच नमस्कार मंत्र सुन के और देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है। इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि हमें इस बात का भरोसा हो जाए कि पतित से पतित आत्मा भी पावन बन सकता है। मैं स्वयं अपने जीवन में जिस तरह से अपनी अज्ञानतावश पतित हो गया हूं, कोई बात नहीं है, मैं अपने जीवन को पावन बना सकता हूं। ये कर्म सिद्धांत इसी के लिए है। हम जाने कि किन वजहों से हम पवित्र हो सकते हैं, उन किन कारणों से हम अपने जीवन को पतित कर लेते हैं। तो बहुत आसान है कि जो पतन के कारण है उनसे हम बच जावें और जो उत्थान के हमारे साधन हैं उनको हम अपना लेवें। और कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। हम अगर अपने जीवन का उत्थान करने के लिए कोई प्रयास ना भी करें तो भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम जिन वजहों से पतित होते हैं उनसे हम दूर हट जाएं तो भी हमारा उत्थान अपने आप हो जाए। जिन चीजों में बुराई है उन चीजों को छोड़ दूं अगर, तो मेरे जीवन में अच्छाई मेरे बिना चाहे आना शुरू हो जाए। ये ध्यान रखिए, बुराइयां संसार में बहुत हैं, हमारे अपने जीवन में भी बुराइयां बहुत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं अपने जीवन में उन बुराइयों को ना बढ़ाऊं तो मेरा जीवन अच्छा होना शुरू हो जाए। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं बाधक कारणा भावात, बाधक कारण के अभाव होने पर हमें जो चीज प्राप्त करनी है वो आसानी से प्राप्त हो सकती है। मेरे अपने उत्थान में जो जो चीजें बाधक हैं या मेरे पतन में जो जो चीजें कारण हैं, मैं उन चीजों से दूर हो जाऊं तो मेरा उत्थान अपने आप हो सकता है। किसी और के सामने मुझे हाथ फैलाने और भीख मांगने और याचना करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा जीवन अच्छा कर दो। और कोई कर भी कैसे सकता है। एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि भगवान कोई मंत्र दे दो। काहे के लिए दे दूं? इसलिए दे दो कि मेरे घर के लोग मेरी आज्ञा में चले, मेरा नौकर तक मेरी आज्ञा नहीं मानता, मुझे कोई मंत्र दे दो। अच्छा भाई, तुम्हारा नौकर तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारे अपने जिससे ब्याह किया है वो उस पे तुम्हारा वश नहीं, तुम्हारे बच्चों पे तो होगा, वो तो छोटे छोटे। अरे कह ले महाराज, बच्चे भी हमारी बात नहीं मानते। अच्छी बात, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे मन पे तुम्हारा वश है? कहते हमारे मन पे भी वश नहीं, तो तुम्हारे काम का कोई मंत्र नहीं है। ठीक है, सारी दुनिया पर तुम्हारा वश नहीं चलता, उसके लिए हम मंत्र बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अपने मन पे खुद वश नहीं है तो कोई भी मंत्र काम नहीं आएगा। बात सिर्फ इतनी है, हमारा अपने जीवन को अगर पतित बनाने का ही हमने तय कर लिया है तो कोई भी हमारे जीवन को पवित्र कैसे बना सकता है। किसके सामने जाकर हम कहें कि हमारा जीवन पवित्र बना दो, अगर हम ही अपने जीवन को अपवित्र बनाने में लगे हुए हैं, पतित बनाने में लगे हुए हैं। तो इतनी सारी बातों में अपन ने एक बात और जोड़ ली कि जैसे बने अपने जीवन को पतन की तरफ से बचाना, उत्थान कर पाओ इस जीवन में चाहे ना कर पाओ, ऐसे विचार जो मेरे जीवन को नष्ट करते हैं, ऐसी वाणी जो मेरे अपने जीवन को का बिगाड़ करती है, ऐसा कोई भी कार्य जो मेरे जीवन का बिगाड़ करता है, उससे मैं बच जाऊं। हम पिछले दिनों लगातार यही बात समझ रहे हैं कि जो कर्म हमने बांध लिए हैं वो किन परिणामों से बांधे हैं, किन वजहों से वो मेरे साथ बंधे हैं। अगर मैं उन वजहों से आज बच जाऊं तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं आगे भी मजबूर हूं कि मुझे ऐसे ही कर्म बांधना पड़ेंगे। शगालो वही शगाला, सुअर को तो सुअर ही बनना पड़ेगा और मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा और देव तो देव ही रहेंगे, ये प्रक्रिया नहीं है कर्म सिद्धांत की। पतित को हमेशा पतित ही रहना पड़ेगा, ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया तो ये है कि मनुष्य भी अगर पतन के काम करे तो वो तिरंच बन सकता हो, तिरंच भी, और बुरे काम छोड़ देवे तो मनुष्य बनके और अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। स्वापि देवो पि देवस्वा जायते धर्म किल विशाल, जो धर्म का आचरण करता है वो स्वान होने पर भी देव हो जाता है, और जो अधर्म का आचरण करता है वो व्यक्ति देव होने पर भी और तिरंच पर्याय को प्राप्त कर लेता है। यही चीज अपन समझ रहे हैं। इसको हम अपनी भाषा में, प्रचलित भाषा में कहते हैं कि भैया जो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। ये बहुत प्रचलित सा अर्थ है और हमने उस प्रचलित अर्थ की भी गहराई समझ ली है कि जो जैसे कर्म करता है वैसा फल तो पाना है उसके लिए, लेकिन वो अपने फल को पाते समय अगर सावधानी रखे तो अपने उस फल को भी शांति से भोग करके आगे की कर्म की प्रक्रिया को नष्ट कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाए, उसके मीठे फल खाए और फिर से बीज बो दे तो नए आम आएंगे, और अगर बीज को जला दे तो कोई नया पेड़ आने वाला नहीं है। ऐसे ही मैं अपने कर्मों का फल भोगूं जो मैंने बांधे हुए हैं, शांति से भोगूं। अगर मैं शांति से कर्मों का फल भोगता हूं तो आगे के लिए मुझे कर्म नहीं बंधेंगे, और अगर मैं उन कर्मों के उदय में और अधिक अपने परिणाम बिगाड़ लूं तो नए कर्म तो बंधेंगे ही और मेरा अपना ये जीवन भी बिगड़ जाएगा। कषायु दयात तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय होने पर जब हम तीव्र परिणाम कर लेते हैं तब चारित्र मोहनी कर्म बंधता है। सूत्र की व्याख्या है ये। कषाय का उदय होने पर कषाय करें हम, ऐसा कोई नियम नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कषायु दयात, अंतरंग में कषाय का उदय आया लेकिन हमने करे अपने परिणाम तीव्र, तीव्र परिणाम आत। और अगर हम नहीं करें अपने परिणाम तीव्र कषाय के उदय में तो चारित्र मोहिनी कर्म बंधे, ऐसा कोई नियम नहीं है। और हमने जो अपने अंदर कषाय बांधी है वो हमने ऐसे ही बांधी है अपने तीव्र परिणामों से कि कोई ने तो जरा सी बात कही और हम आग बबूला हो गए। इस तरह हम अपने परिणाम कर्म के उदय में स्वयं बिगाड़ते हैं। कर्म का उदय हमारे परिणाम बिगाड़ता है ये तो कहते कहते जिंदगी निकल गई। हाँ, कर्म का उदय मेरे परिणाम बिगाड़ देवे तो फिर इसका मतलब है कि कर्म का उदय प्रबल है, मैं कमजोर हूं। नहीं, कषायु दयात, ये बात ठीक है कि कषाय का उदय आया है लेकिन तीव्र परिणाम, कषाय ने तीव्र परिणाम नहीं करवाए, मैंने स्वयं तीव्र परिणाम करे हैं, इसलिए मैंने चारित्र मोहिनी कर्म अर्थात और नई कषायों को बांध लिया है। और आज वर्तमान में हम करते क्या है, यही करते हैं। हमारे चारों तरफ कुछ तो हमारे अपने संस्कार, हेरिडिटी जिसको कहते हैं, कुछ हमारे अंदर होने वाली साइको मैकेनिज्म, हमारा अपना मन और मन की बहुत सारी धारणाएं, प्री जुडिस जिसको कहते हैं, पूर्व धारणाएं, पूर्व के संस्कार, पूर्व की धारणाएं, हमारा अपना वातावरण, सर्कमस्टेंसेस जिसमें हमें रहना पड़ता, और हमारे कर्म का उदय, ये चार चार चीजें हैं हमारे साथ। हमारे अपने संस्कार भी खोटे हैं, अगर हमारे मन में भी धारणा, जो व्यक्ति जरा जरा सी बात पे गुस्सा होने की आदत डाल लेता है वो भली बात पे भी गुस्सा हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि आदत इतनी प्रबल हो चुकती है। जिसने धारणा जिसके बारे में जैसी बना ली है, प्रीजुडिस जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में, अधिकांश लोग उसी से ग्रसित हैं। ऐसा होएगा तो ऐसा हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, मैं अपने परिणाम बिना हुए भी बिगाड़ता हूं, मैं अपने परिणाम सोच सोच के बिगाड़ लेता हूं। वो मुझसे ऐसी बात कहेगा, अब जब मिलेगा मैं ऐसा जवाब दूंगा कि समझ में आ जाएगा, और फिर वो उसके बाद अगर ऐसी बात कहेगा तब तो फिर एक आध तमाचे ही दे दूंगा उसको, ऐसे फोकट। अभी कुछ उसने कहा नहीं, हो सकता वो सामने वाला माफी मांगने आ रहा हो, लेकिन भैया जी क्या सोच रहे हैं, वो आएगा, सुना तो है, कह रहा था कि मैं आऊंगा, मिलने के लिए आऊंगा, क्या कहेगा, मिलने के लिए आकर के वो चार बातें कड़ी कहेगा, मैंने जवाब पहले से खोज लिया, ये नहीं सोचूंगा मैं कि हो सकता है कि वो अपने किए की क्षमा मांगने आए, नहीं। दूसरा अगर कषाय नहीं भी करना चाहे तो हम उसके माध्यम से कषाय करके और उसे भी कषाय करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, देख लो आप। दूसरा अगर कषाय से बचना चाहे तो भी हम उसे कषाय से बचने नहीं देते हैं, बल्कि उसके और अधिक कषाय में निमित्त बनते हैं। इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा कि कषाय का उदय तो सबके है, लेकिन जो जितने तीव्र परिणाम करेगा वो उतना ज्यादा कषाय का आगामी बंद करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कषाय के उदय में कषाय बने ही, बताइए। हम इतना प्रयास अवश्य करें कि जब जब भी कषाय का उदय सबको है, उस कषाय के उदय में हमारे परिणाम न बिगड़ पावे। कषाय का उदय हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ता है, कषाय की उदीर्णा हम करवा लेते हैं तो हमारे परिणाम बिगड़ना शुरू हो जाए। जरा सा कुछ भी हमारे विपरीत हुआ और जरा कषाय का उदय आया और हमने अपने परिणाम और तीव्रता से बिगाड़ दिया, बस नई कषाय और बंद गई। ये है चारित्र मोहिनी कर्म, 16 कषायें कैसे बंधती हैं एक सूत्र में व्याख्या कर दी, और उपाय भी बता दिया कि जब कषायों का उदय आए तब अपने परिणामों को तीव्र नहीं करना। दूसरा भी अगर कषाय करवाए तो उससे कहना कि भैया काय को विकार में अपना जी हलकान कर रहे और हमारे लिए भी तुम व्यर्थ में कषाय करवा रहे हो, थोड़ी देर ठहरो, अपन आराम से फिर इस बात पे विचार करें। ऐसा हो जाता, कषाय का उदय चलते और निमित्त ऐसे मिलने पर, निमित्त की भी प्रबलता कई बार होती है, ऐसा नहीं समझना कि निमित्त नहीं करता कुछ भी, हमारे उपादान में तो कमजोरी है ही, लेकिन कई बार बाह्य निमित्त भी हमारे उपादान को कमजोर बना देते हैं और कई बार बाह्य निमित्त भी हमारे उपादान को सशक्त बना देते हैं। ये तो अपन रोज जीवन में देखते हैं, अगर हम कोई काम करने में सक्षम है और चार लोग कह दें तुम्हारे बस को, कहूंगा हो तुमसे, तुम कर हो का खा के कर हो, तो हमारी हिम्मत भी हो तो पस्त हो जाए, और कोई व्यक्ति अगर उसमें हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं, अरे नहीं नहीं करो तो हो जाए, देखो तुमने पहले भी तो एक तो काम करो। तो हमारे बिहार करते समय 2 दिसंबर की बात है, सन 82 की, और कटनी से पूरे आचार्य महाराज के संग सहित और कहां तक पहुंच पाए थे, शहडोल पहुंच पाए थे, बुढ़ार तक, और एड़ी में कांच घुस गया, बीमारी पहले से फटी थी उसमें घुस गया, और निकाल तो दिया पर उसका थोड़ा अंश रह गया होगा, ध्यान नहीं दिया उत्साह में कि शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, कोई कम बात थोड़ी, 1000 किलोमीटर की यात्रा है, अभी इतने में थोड़ी बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के कुछ नहीं करवाना, इलाज विलाज चलने दो। और बस 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाने के बाद और उसने भीतर भीतर से एप्सिस जिसको कहते हैं वो बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद तो पैर धरना ही मुश्किल हो। जैसे तैसे करके उसको ऑपरेट कर दिया, वो निकल गया, लेकिन अब हीलिंग होना तो बहुत कठिन है, आसान तो है नहीं। रोज चलना है 22-25 किलोमीटर सुबह भी और शाम को भी, रोज की यात्रा थी, 44-45 का एवरेज था, सन 82 की बात है, अब की बात अब अलग बात हो गई। उस समय तो 22-24 वर्ष की आयु थी। अब चले जा रहे हैं, गिट्टी है, पत्थर है, पानी है, 2 दिसंबर में ठंड का सीजन पड़ता है, हम लोग पहुंचे थे 19 जनवरी को हजारीबाग, और 11 पीछियां हैं, हजारीबाग में मीटिंग हुई है कि नए नए महाराज हैं, आ रहे हैं, कमंडल कौन उठाएगा, वहां पर कोई महाराज तो पहुंचते नहीं थे, ना किसी को इस तरह की आदत थी, चौके कौन कौन के लगेंगे तय कर लो, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, रात को संघ आ रहा है, कमंडल कौन पकड़ेगा भाई, सवेरे से कौन उठेगा, 9 बजे उठने वाला कह रहा है कि इतनी ठंड में हमारे बस का नहीं है, 6 बजे आने वाले हैं तो हमारे बस का नहीं। आप आश्चर्य करेंगे मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। और पहुंचा संघ 8:30 बजे, हाथ को हाथ नहीं सूझता इतना कोहरा, इसके बाद भी सब चलते जा रहे हैं, चेहरे पर जरा भी मलिनता नहीं है, चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही प्रसन्नता, क्योंकि अगर मलिनता आती भी है तो आगे जाने वाले आचार्य श्री के चेहरे की निर्मलता देख करके परिणाम अपने आप समझ जाते हैं कि कहां आ रहे, देखो वो जा रहे हैं, वो चले गए आचार्य श्री, चलो भैया एक कमजोर हो तो उसको देख देख करके सब कमजोर हो जाते हैं, और एक अगर कोई धर्म के रास्ते पर पूरे ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हो तो उसको देख करके, आचार्य जी कहते हैं कि इंजन ठीक रहे तो डिब्बे अपने आप चलते चले जाते हैं। ये क्या चीज है, ये कर्म सिद्धांत है बहुत बड़ा। और चले जा रहे हैं और वहां लोग दंग हैं देख करके कि इतने छोटे छोटे 22-25 साल के सब दौड़ते हैं कमल नल पकड़ने, सब भूल जाते हैं कि हमने सोचा था कि ये पकड़ेंगे कि वो पकड़ेंगे, बूढ़े बूढ़े लोगों को तैयार किया था कि ये पकड़ लेंगे भैया, नौजवानों का काम नहीं है, लेकिन देखा उन्होंने कि अरे ये तो सब नए नए हैं, और पकड़ लिए कमंडल, और उसमें से एक 45-46 साल के आएंगे, वो शायद मिलिए कभी उनसे, और वो माइक पर बोलने खड़े हुए और एक शब्द नहीं बोल पाए और रोना शुरू हो गया, क्या हुआ इनको, बाकी लोग भी दंग हैं, इतना सशक्त आदमी जिसका शरीर देख करके, 6 फुटा शरीर देख करके और अच्छा डीड डॉल देख करके कोई भी कहेगा इतना कमजोर नहीं हो सकता, रो नहीं सकता ये आसानी से, और वो रो रहे हैं। जिनके पान पाउच का एक दिन का, एक महीने का स्पेंड 3000 रुपए खर्चा था अकेले पान पाउच का, जिन्होंने 7 व्यसन में से कोई भी व्यसन नहीं छोड़ा था, ध्यान रखना उस व्यक्ति की बात कह रहा हूं जो क्लब अटेंड करता है, लेकिन वो भी जो है मंच पर आकर के, और वो कह रहे हैं कि आज से जो है मेरी सारी चीजों का मैं त्याग करता हूं। इस दिगंबर मुद्रा को देख करके मेरा मन परिवर्तित हो गया है। जब हम लोगों ने उनसे बाद में पूछा कि आप इतने विहल कैसे हो गए और ऐसे एक झटके में सब कुछ कैसे छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में आप लोगों को देखकर सिर्फ एक बात आती थी कि मेरे पुत्र के बराबर ये मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और मैं इतना बड़ा होकर के और अपना पतन कर रहा हूं, बस एक ही बात कचोटती थी। और उसके बाद तो उनकी मां उनके सिर पे हाथ फेरती है कि मेरा बेटा सुधर गया महाराज, आपके चरणों में मैं क्या कहूं, जिंदगी निकल गई हमारी, 45 साल का हो गया, किसी की नहीं सुनी और आपने भी कुछ नहीं कहा, अकेले देख करके मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों के साथ रहिएगा जिनकी कषाय मंद है, तो कितने ही कषाय का तीव्र उदय आवे, कषाय मंद हुए बिना नहीं रहेगी, और जिसकी कषाय तीव्र है उसकी संगति करोगे तो आपके कर्म के उदय मंद होने पर भी और परिणाम तीव्र हुए बिना नहीं रहेंगे। मुझे कहना यह, अगर जीतना है अपनी कषायों को तो ऐसे लोगों की संगति करिएगा, और ज्यादा कठिन उपाय नहीं बता रहा हूं, इतना ही पर्याप्त है। जहां लगे, हम तो ये कहते हैं कि इस कागज की वजह से दो लोगों के बीच कषाय बढ़ती है तो इस कागज को चिंदी करके नाली में फेंक दो, हमारा तो आशय ये है कहने का। इतनी सड़ी सड़ी चीजों पर हम कषाय करते हैं, कभी विचार करना, बहुत छोटी छोटी जिनका कोई औचित्य नहीं है रोजमर्रा के जीवन में, जरा जरा सी बातों को लेकर के और हम अपने परिणाम खराब करते हैं, कषाय के परिणाम और तीव्र परिणाम कर लेते हैं। उस समय विचार करें कि 5 मिनट को हमने तीव्र परिणाम किए हैं भले ही, लेकिन कितना अधिक मैंने कर्म बंद किया है उन 5 मिनटों में, भले ही बाद को हमारी कषाय शांत हो गई है, लेकिन उस समय अगर आयु बंधे तो कहां की आयु बंधेगी, और कर्म बंधे तो कैसे खोटे कर्म, जिनको कि मुझे भोगना पड़ेगा बाद में, फिर रो रो करके भोगना पड़ेगा, हंस हंस करके बांधता हूं मैं और फिर रोता हूं भोगने की, बस इतना ही विचार कर लें। और 9 कषायें हैं, वे कैसे बंधती हैं, उनके अलग अलग आचार्यों ने, कुछ के बताऊंगा कुछ नहीं बताऊंगा, जैसे कि स्त्री वेद कैसे बनता है नहीं बताऊंगा, राजवार्तिक रखी है वो दे दूंगा जिसको पढ़ना हो, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, क्या करूं आज तक नहीं कह पाया, जानता हूं कि किन वजहों से वो पर्याय मिलती है, सब निंदा करते हैं, आज तक उस पर्याय की प्रशंसा किसी ने नहीं की, धर्म की गद्दी हो चाहे कुछ भी हो हर आदमी करता है और उसको हमेशा नीची ही दृष्टि से देखा जाता है।
कि जैसे एक पंडित जी जो है एक गांव में गए, उनके लिए बुलाया गया था प्रवचन के लिए, वो जब मंदिर पे पहुंचे तो वहां कोई उनको मिला नहीं, उनने माली को बुलाया कि भैया जाओ तो 3-4 आदमियों को बुला लिया कि ये पंडित जी आ गए हैं, वचन का को टाइम हो गया। तो पंडित जी ने उनको बुलवाया तो माली क्या समझे कि किस किस को बुलाना है, तो वो 3-4 लोगों को बुला के ले आया, और उन 3-4 लोगों में जो है एक व्यक्ति तो रिक्शे वाला था। तो उस रिक्शे वाले ने कहा कि बताइए बाबू जी क्या काम है, बोले भाई अभी तो मुझे कहीं जाना नहीं है, भूल से वो आपको बुला के ले आया है, आपका काम नहीं है, आप चले जाइए। वो आया हुआ भी चला गया, 2 मिनट उसके बाद बातचीत हुई और वो चला गया। दूसरे वाले से पूछा कि आप, बोले जी हमें बुला के ले आए हैं, हम तो अपने काम से जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे हैं अपने काम से, बोले हम स्टेशन जा रहे हैं अपने काम से। अरे भाई तो फिर हमारा भी एक काम कर दो, जब स्टेशन जा ही रहे हो, हम शाम तक यहाँ पर हैं, शाम को यहाँ से जाएंगे, हमारा रात की किसी गाड़ी का रिजर्वेशन तो करवा दो। मैं कह रहा हूँ पैसे दे दो, रिजर्वेशन करवा देंगे। और उस व्यक्ति को वोट भेज दिया, वो 3 लोग और बचे, 5 आ गए, तो उसे 3 बचे से उनसे कहा कि आप क्यों आए, कहते हैं मालूम पड़ा कि आप आए हो, संवचन का सुनने आए हैं। अच्छा तो बैठो सर। तो उनको बिठा लिया और उनके साथ 1-2 घंटे और अच्छी चर्चा शुरू हो गई, धर्म की चर्चा चलने लगी। और उसके बाद जब चर्चा पूरी हुई तो उसमें से जाते हुए और एक व्यक्ति को देखा कि वो तो यहीं पर रुक गए हैं, जा ही नहीं रहे हैं। उनसे पूछा कि क्या भाई आप कैसे रुके, बोले हम भी यहाँ पर कौन यहाँ के हैं, हम तो बाहर से आए हुए थे, हमारी गाड़ी रात में है। अरे जन तो फिर बहुत अच्छा है, हमारे साथ में चले चलना। तो दोनों जन बैठ गए, बाकी 2 चले गए। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया हमने आपको बताई, लेकिन जरा विचार करना, इसी तरह हमारे जीवन में भी है, हम बुला लेते हैं अपने मन वचन काय के द्वारा कर्मों को, और फिर जैसे हमारे परिणाम होते हैं उतनी कितनी दूर भी हमारे साथ ठहरते हैं उसको हमने दो मिनट में निपटा दिया रिक्शे वाले को, उसने कह दिया कि जी पैसा दो उसे टिकट खरीद लिया, बाकी के साथ घंटे दो घंटे बैठे, उसमें से भी दो अपने काम से चले गए, तीसरा कमरा उनका आप के साथ यात्रा करेंगे तो वो रह गया। बताइएगा किसी तरह हमारे साथ कर्मों का हिसाब बनता है, ये तो सामान्य संसार का उदाहरण है। ऐसे मन वचन काय की जो भी क्रिया करते हैं उससे हमारे अंदर कर्म अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि वो माली पांच लोगों को बुला के ले आया था ऐसे ही हम बुला लेते हैं, निमंत्रण दे लेते, लेकिन निमंत्रित जो कर्म है उनके साथ हाउ टू बिहेव, आपको क्या व्यवहार करना है ये आप पर निर्भर करता है। जैसा व्यवहार करेंगे उतनी देर तक वे बुलाए हुए लोग आपके साथ रुकेंगे, मेहमानी आप उनकी जैसी करेंगे उतनी देर आपके साथ रुकेंगे। आप अगर उनको दो मिनट में निपटाना चाहें तो दो मिनट में निपटा सकते हैं, घंटे भर रखना चाहें तो घंटे भर, और हमेशा अपने साथ रखना चाहें तो हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। ये हमें इन कर्मों के साथ बंधते समय भी हमारी अपनी स्वतंत्रता है। हमने अगर मन वचन काय की अज्ञानतावश क्रिया के द्वारा और कर्मों को बुला लिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि वे कर हमारे साथ हमेशा रहे आए। इतनी बात अपन के समझ में आ गई। और जो कर हमारे साथ मान लो हमने बांध भी लिए हैं तो वे सब हमें ज्यों का त्यों फल देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा समझ लें अपन, जैसे कि टेप हो रहा है और डीमैग्नेटाइजर के ऊपर अगर इस टेप को कैसेट को चला दिया जाए तो खाली हो जाएगी। हमने जो अभी टेप किया है उसको हमें फिर से सुनने की मजबूरी नहीं है, लेकिन डीमैग्नेटाइजर होना चाहिए। इस कैसेट को अगर डीमैग्नेटाइजर के ऊपर लगा दिया है तो कैसेट पूरी ज्यों की त्यों खाली हो जाएगी, जो कुछ टेप हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम दीप रात तक अभी मैग्नेटाइजर अपने भीतर लगा ले गए तो बांधे हुए सारे कर्म जो है जितने बंधे थे सब सत्ता में नष्ट हो सकते हैं, इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि जो हमने बांधे हैं वो हमको नियम से भोगना ही पड़ेंगे, हम चाहें तो उनको सत्ता में ही और नष्ट कर सकते हैं। भैया बहुत से उदाहरण ऐसे हैं हमारे बांधे हुए कर्म, हमें लगता है कि हमें जो के तो भोगना पड़ेंगे। मैं इस बात पर ज्यादा इसलिए जोर दे रहा हूं कि हम लोग इतने मजबूर हो जाते हैं अपने कर्म बांधने के बाद कि शायद हम काट नहीं सकते हैं। नहीं, अगर हमने बताइएगा कि एक पेड़ लगाया है और आम का पेड़ लगाया और उसमें छोटी छोटी सी कैरी आना शुरू हो गई, छोटे छोटे से आम लग गए हैं, तो क्या मजबूरी है कि हम उनको खाएं? वो हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम वेट कर लेंगे जब तक वे पकेंगे नहीं तब तक हम इनको पेड़ पर लगे रहने देंगे, जब पकेंगे तब हम जब मीठे हो जाएंगे तब खाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन चलायमान हो जाए अरे नहीं थोड़ा स्वाद तो लेके देखें, तो अगर आपको खटमिट्टा स्वाद लेना है तो अभी तोड़ लो और उनका खटमिट्टा स्वाद ले लो, और अगर आपको जो है कुछ उनमें परिवर्तन करना है तो आप उनमें परिवर्तन कर लो, आप चाहो तो उन कैरी की चटनी बना लो, आप चाहो तो उनकी जो है पीस बना करके और शक्कर के साथ उबाल करके क्या बोलते हैं उसको लौकी बना के खा लो। आप अगर चाहते हैं कि वे समय से पहले और मुझे अपना फल दे दें और मीठा फल दे दें तो लाओ उनको पकने, अभी 10 दिन बाद पकेंगे पेड़ पर, उनको भूसा में दबा करके पत्ते में दबा करके रख दो वो पक जाएंगे, 5 दिन पहले पक जाएंगे और पके हुए फल को खाने का आनंद ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि हमने लगाए हुए आम के पेड़ में मजबूरी नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा, तो इतनी मजबूरी है कि आम का पेड़ लगाया है तो आनंद फलेगा बस। हाँ, आप ये सोचो कि बबूल के में आम फले, ये नहीं हो सकता, इतना जरूर है जो हमने जिस तरह का कर्म बांधा है उसमें रद्द बदल हम कर सकते हैं, पूरी तरह से हम उसे आम में से और से फल आ जाए ये तो नहीं कर सकते, लेकिन आम आए हैं तो उनको किस तरह से मुझे भोगना है। मैंने जो कर्म मान लो अज्ञानतावश बांध भी लिए हैं तो उनके फल को मुझे भोगना है, तो वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं जैसा भोगना चाहूंगा वैसा उन कर्मों के फल को भोग सकता हूं। मैं चाहूं तो उन कर्मों के जैसे कि रजिस्टर्ड एक नोटिस हमारे लिए जारी किया जाए और हम उसको लेने से इनकार कर दें तो बताइएगा वो क्या मजबूरी है लेने की? इसको कर्म अपने हृदय में आ गए और हम उसके हृदय को लेने से इनकार कर दे गए, कोई हमें गाली दे गए और हमारे भीतर बैठा हुआ क्रोध कषाय का उदय आ जाए और हमारा मन जो है आ व्याकुल विकल होने लगे, कोई बात नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, बात ही नहीं बढ़ेगी। हम उसके उदय में भी शांत रह सकते हैं। और धर्म यही सिखाता है कि कर्म निरंतर बंध रहे हैं, निरंतर हमें भोगने में आ रहे हैं। कर्म बांधते समय क्या सावधानी रखना, यह तो सब बताते हैं, लेकिन कर्म भोगना पड़े तो भोगते समय क्या सावधानी रखना, यह जो है धर्म बताता है। कर्म का फल भोगते समय क्रोध के उदय में आप चाहें तो क्रोध कर सकते हैं, और क्रोध के उदय में आप चाहें तो शांत भी रह सकते हैं, संता भी रख सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। कोई मजबूरी नहीं है कि किसी ने गाली दी है तो हमको गुस्सा करना ही पड़ेगा। हम कह दें उसके गाली देने के बाद की क्षमा करना, आपने गाली तो दी थी कि हमें गुस्सा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आपकी मशीन थोड़ी है कि आपने बटन दबाया और हम चालू हो गए। देखो तो मजा, दूसरा तो हमें गाली दे और बस जी हम अपना खराब करें, ये तो बिल्कुल घाटे की सौदा है। ये तो हम दूसरे के हाथ की मशीन हो गए कि इसने जरा बटन दबाया, जरा प्रशंसा कर दी से हम फूले नहीं समाए, जरा विपरीत बात कर दी से हम फौरन जो है संक्लेषित हो गए। मतलब हम दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं क्या? वो जैसा चलाएगा वैसा, वो गाली देगा तो हम ना खुश और वो प्रशंसा करेगा तो हम खुश, ऐसा विचार करना चाहिए। और कर्म के उदय में अगर हम ऐसा विचार कर ले गए तो कर्म के उदय को हम शांति से निकलते हुए देखेंगे कि ये आया मुझे क्रोध का उदय, पर मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध का उदय आ सकता है लेकिन मेरे परिणामों को खराब जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मेरा कर्म का उदय मेरे परिणामों को बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरे अपने ऊपर निर्भर करता है। कर्म का उदय कितना भी तीव्र क्यों ना आए, मेरे परिणाम मेरे हाथ में है। एक बार की घटना आपको सुनाता हूं, बहुत दिन तक चलेगी ये चर्चा, ऐसी थोड़ी थोड़ी सी कठिन लगने लगे तो मुझे बता देना, फिर दूसरे दिन समझा दूंगा। इसमें समझने जैसी चीज है, मैं पहले भी कहता हूं कि प्रवचन सुनने जैसी चीज होते हैं। मैं प्रवचन कभी नहीं करता, मैं बात करता हूं ताकि आप सुने समझें और मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करके उस चीज को क्लियर कर लें। बार बार मैंने बताया मैं आने वाला हूं, मैं आपको इतनी फुर्सत है, ये ध्यान रखना, जो निकल गया वो निकल गया, मेरे मुंह से भी दूसरी बार नहीं आता। अब तो पेट होने की सुविधा हो गई है, नहीं तो मैं भी अपने बोले हुए को दूसरी बार बोल पाऊं, मुझे जरूरी नहीं है कि वो ज्योकतें आ जाए। भाव दशा की बात है, जिस भाव दशा में जैसे आपकी इच्छा होती वैसी चीज आ जाती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। तो बहुत सावधानी से इस प्रक्रिया को अपन समझ लें। ये प्रक्रिया बहुत कम अवसर पर अपन को समझने का मौका मिलता है, वैसे तो और सारी चीजें समझने के लिए मिलती हैं, पर जो हम कर्म बांध रहे हैं, जो हम कर्म भोग रहे हैं, उन सब पर हमारा अधिकार है। हम उन सब में परिवर्तन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं ये हमें देखना है। हमारे अपने हमें पुरुषार्थहीन नहीं होना, कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने का नहीं है। जो जिसके भाग्य में है वो उसे मिलता है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। हम सबके भाग्य में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी पुरुषार्थहीनता की वजह से, बताइएगा किसके भाग्य में नहीं है यहां पर कि वो साधु ना बन सके? सबके भाग्य में है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। क्या कोई कर्म है जो आपको साधु बनने से रोक रहे हैं? क्या कोई कर्म है जो हमारे अपने कल्याण से हमें रोक रहा है? कोई कर्म नहीं है, हमारे अपने पुरुषार्थहीनता है जो कि हमें रोकती है। आप यहां तक आए हैं कौन से कर्म के उदय में आए, मुझे बताइए? किसी कर्म के उदय में नहीं आए हैं, अपने पुरुषार्थ से वहां पर आए। कर्म का उदय आ जाएगा तो वहां से उठ के चले जाएंगे। हाँ, आए नहीं है आप कर्म के उदय में, बाधा डाल सकता है कर्म का उदय, लेकिन कर्म का उदय कुछ दिलाता विलाता नहीं है। मैं धर्म ध्यान करवाता है कर्म का उदय, धर्म ध्यान में बाधा डाल सकता है कर्म का उदय, करवा नहीं सकता। करना तो हमारे हाथ में, करना तो हमारे पुरुषार्थ से। ये नहीं समझना कि हम पूजा कर रहे समय भले कर्मों को उदय है तो इसे हम पूजा कर रहे हैं, नहीं, भले कर्मों के साथ मेरा पुरुषार्थ था इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं, नहीं तो इन भले कर्मों को उदय में मैं संसार में भी और दूसरी सामग्री इकट्ठे करने में लग सकता था। वो भी दुकान भी साता के उदय में चलती है और पूजा भी साता के उदय में होती, ध्यान रखना। पुरुषार्थ हमारे ऊपर है कि साता के उदय में दुकान चलाने का पुरुषार्थ करना है, कि साता के उदय में मंदिर में जाकर के पूजा करनी है, महाराज के प्रवचन सुनना, दोनों में साता कर गए। इसलिए ये बात बहुत बहुत स्पष्ट रूप से समझने की है जहां पर भी हम लोग बहुत अधिक कहना चाहिए कर्म के भरोसे बैठे हुए लोग, ना क्या करें पाप को उदय है ऐसा कहना बहुत, महाराज हम अज्ञानी है ये नहीं चलेगा। आप आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को बताने के बाद ये नहीं कह सकते आप क्यों अज्ञानी है, क्यों आपने ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, क्यों आपने ऐसे कर्म बांधे कि जिनका फल भोगने में आप रो रहे हैं, तो अपने जब बांधे हैं तो उनको शांति से भोगिएगा। शांति से भोगने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, रो के तो दुनिया भोग लेती, हंस के भी भोग लेती, हंस के रो के दोनों प्रकार से भोगना ठीक नहीं है, शांत भाव से भोगना, क्षमता पूर्वक भोगना ही वास्तव में कर्मों से बचना है। मैं आपको वो घटना सुना रहा था आदर्श श्री के जीवन की, बस इतनी रखूंगा क्योंकि है तो बहुत सारी चीजें, पर एकदम कह दूंगा तो आपके समझ में इतने ही समझ में आ गया अपन के कि भैया जो कर्म हम बांधते हैं, कुछ कर्म है जिनका हम फल भोगते हैं, कुछ कर्म है जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उनका हमारे अंदर संस्कार पड़ रहा है, और कुछ हमारे अंदर बंधे हुए हैं जो उदय में आते हैं उनका हम फल भोग रहे हैं। बांधते समय भी हम सावधानी रखें और भोगते समय भी सावधानी रखें, दोनों पर हमारा वश है। इतनी बात तो सबके समझ में आ गई हो, अब उसका उदाहरण समझ लें वो हम बाद में बताएंगे कि कैसे बांधते हैं और कैसे उनसे बचे हम, ये प्रक्रिया फिर अपन चल। आज अपन ये देख लें कि कर्म के उदय पर हमारा वश है कि नहीं है। जो कर्म उदय में आता है तब भी अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम क्षमता रख करके उस कर्म के उदय को मिथ्या कर सकते हैं, उस कर्म के उदय को बिना लिए इनकार कर सकते कि हमें नहीं चाहिए। मेहमान को जैसे हम बुला लेते हैं लेकिन उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करो तो दूसरी बार नहीं आएगा, और अपस्थी से बैठे हुए खूब रीझ बीज करें तो वो तो फिर से आए। ऐसे हमारे बांधे गए कर्म हैं जब उदय में आते हैं तो हम इनमें संकलेश कर लेते हैं या कि अहंकार कर लेते हैं, विवेक के बहुत अच्छे फिरा है हम, तुम संकलेश करो सोया है और अहंकार करो सोया है, और तुम कछू में कहो तो फिर नहीं आते हैं, चुप बोले ही नहीं है, भोजनों से बुलाओ तो और पूछ रहे पूछी तक नहीं है कि कहा, बल्कि चीजा पूछ रहे कहा भोजन तो करके आए हुए कि जिस तरह तो भोजना को मौत हो जाए तो फिर बाद में भरे पहुंचे तो पूछन लगे शायद भोजन तो करके आ ही। ऐसे कर्मों के साथ है, हमने अगर बांध लिए हैं और वो उदय में आते हैं और हम कह दें कि हमें आपकी दरकार नहीं है, आप हमें क्रोध दिला सकते हैं पर हम क्रोध करें या नहीं करें ये हमारे ऊपर निर्भर। अब उदाहरण आपको देता हूं, आचार्य श्री के जीवन की घटना है सन 78 की है, जब द्रोणागिरि में पंच कल्याणक हो रहे थे, जागृत होना था, तब आचार्य श्री वहां पर 24 के ऊपर छत पर बैठे थे, साहू अशोक कुमार जी आए, और अभी तक तो और महाराजों के पास जाते थे तो महाराज खुद ही पूछ लेते थे, एक आदमी पहले परिचय दे आता था कि साहू जी आ रहे हैं, उन्हें खबरदार हो जाओ। हाँ और क्या, ऐसे लोग समाचार देते तो, लेकिन आचार्य श्री के पास तो चाहे राष्ट्रपति आओ चाहे कोई सामान्य व्यक्ति आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, साहू अशोक जी 3 दफे घूम फिर करके प्रणाम करके चले गए, महाराज अपने काम में लगे हैं तो लगे हैं, साहू जी आओ तो कोई सामान्य व्यक्ति आओ तो दर्शन करो और चलते चले जाओ और अपने काम में लगे हैं। अब देखना आप मजा, उनके मन में आया कि 2 मिनट तो सुना तो बहुत है उनके बारे में, ये मिल भी गए हैं आचार्य श्री, 2 मिनट कुछ बात करने का मौका मिल जाता, उनसे सौभाग्य मिल जाता, क्या करें, तो यहां वहां लोगों से अफसोस लगाते हैं कि भैया कैसे बात करी जाए महाराज से, वो तो देखते ही नहीं हमारी तरफ, हम तो और कई जगह जाते हैं सब लालायत रहते हैं, हमसे बात कर दी और हमारी दिक्कत जाए हो रही कि हम उनसे बात कर दी लालायत, ये तो हमें गरीब जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका है। तो लोगों ने कहा उनको कि देखो महाराज से तो बात करना हो तो व्रत की बात कर सकते हो, जाकर के कहो कि महाराज कुछ नियम लेना चाहते तो जरूर देखेंगे आपकी तरफ, तो उपाय बता दिया हमने, तो जाकर के बैठ गए और जाकर के कहा महाराज अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ नियम लेना चाहता हूं। आचार्य श्री अपना काम 1 मिनट को रोक के देखा, देख करके फिर करने लगे। हाँ परीक्षा लेने आए हो शायद, या कि हमें हमारा टाइम खराब करने आए हो कि इसी तरह से इस बहाने को शुरू हो जाए, इतना देख करके फिर अपना काम। महाराज अभिनंदन लेना है।
अच्छा,
तो जरूर पहली बार में अगर चुप हो जाते तो ठीक है, काम हो गया। दूसरी बार फिर मतलब जिज्ञासा तो है, एक दो बार परीक्षा तो करना पड़ेगी। तो अच्छा, क्या नियम लेना है, क्या अभी करते हो, इतने तो उनको और अंदर क्या क्या है, दो आंखें इतने बोल दो कि क्या करते हो अभी और क्या नियम लेना है, इतने दो शब्द सुनना चाह रहे थे वो। और अब तो बातचीत शुरू हो गई, कहना महाराज नियम तो बाद में, तो हमारे प्रश्न सही है। अब जब बात शुरू हो गई है तो महाराज अब तो मना नहीं करेंगे, क्या प्रश्न है पूछिएगा। लोगों ने उतनी देर में कह दिया कि ये अशोक जी सही हैं, जो भी आचार्य जी ने सुन लिया, क्या प्रश्न है आपका। महाराज इतनी भीड़ आ रही है, आप छत पे खुले में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, मैं खुद भी जो है अभी तीन दफे आपके चक्कर लगा चुका, प्रणाम कर चुका, आप तो अपने में लीन रहते हैं, कैसे ऐसा कर पाते हैं। इतनी भीड़ भाड़ के बीच भी आप अपना काम कैसे कर पाते हैं, आप शांति से अपने ध्यान में कैसे लगे रहते हैं, ये हमको समझा। अभी के अभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आया, और नियम नियम तो महाराज आप जो कहोगे तो हम वो नियम ले। ये हमारा सौभाग्य कि आपसे बात करने का अवसर हमको मिल गया, इसलिए आप जो कहोगे वो नियम ले लेंगे, पर इस प्रश्न का समाधान दें। आप ऐसी बहुत जोर से हंसे, विनोदी स्वभाव के तो हैं आप ऐसी, जिनने निकट से देखा है वो जानते हैं इस चीज को। तो लगे अच्छा आप स्कूटर चलाते, कहते हमारा भी स्कूटर चला, मोटर भी चलाते हैं, हाँ मोटर भी चलाते हैं। अच्छा जब बहुत ढलान आती है गाड़ी तो उसमें क्या करते हैं, अरे महाराज इसमें क्या पूछने की बात है, हम गियर बंद कर देते हैं, न्यूट्रल में डाल देते हैं गाड़ी। बोले बस हम भी जब जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आना जाना शुरू होता है, अपनी गाड़ी न्यूट्रल में डाल। आगे समझ में कहते हाँ महाराज समझ में, कर्म सिद्धांत जितना ही है, कर्म का उदय ठीक ऐसी आने जाने वाली भीड़ की तरह है, और मुझे उससे प्रभावित रह के अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डालना मतलब उस समय राग द्वेष नहीं करना। जब कर्म उदय में आवे तब उस समय भी जो है अपने परमाणु को संभाले रहना, बिगड़ने नहीं देना, न हर्ष करना न विषाद करना। कर्मों को जीतने का सबसे बड़ा उपाय, कितने छोटे कर्म बांध लिए हो, कितने कठिन कर्म बांध लिए हो, उन कर्मों के फल भोगते समय यदि हम ऐसी सावधानी रख ली दें कि हर्ष विषाद ना करें, शांत रह करके उनको देखें कि ये आया मेरे